मन वश होता है ज्ञान से।
जब तक मैं चंदुलाल हूं वह ज्ञान है, वह भान है, तब तक मन के साथ लेना देना है, तब तक मन के साथ तन्मयाकार होता है। अब हम शुद्धात्मा बन गए तो मन के साथ लेना देना ही नहीं रहा, ज्ञाता दृष्टा पद आ गया, इसलिए मन वश हो गया कहा जाएगा।
मन वश होने के बाद फिर ज्ञाता दृष्टा पद स्वाभाविक चीज हो जाती है क्या?
आपको मन वश हो ही गया है, अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे जैसे मेरी बात सुनते जाओगे वैसे वैसे मजबूत बनते जाओगे, हमारे वचन बल से। हमारा वचन बल ही काम करता रहता है।
अभी तो हमारा मन वश नहीं रहता, तो मन वश करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है?
वह ज्ञान से वश में रहेगा। हमने जो ज्ञान दिया है वह मन को वश करने वाला ही है, उससे फिर आपको लोगों का मन वश में रहेगा।
नहीं दादा, पहले हमें अपने मन को वश में करने दो।
पहले आपका मन आपके वश में हो जाएगा, और अगर आपका मन आपके वश में हो गया तो अन्य लोगों का मन भी आपके वश में हो जाएगा। जितना दूसरों का मन आपके वश हो गया उतना आपका मन आपके वश हो गया। बाहर वालों के ऊपर से फिर आप अपना नाप लेना।
क्या उसका टेस्ट यह है कि अगर हमारा मन हमारे वश में रहेगा तो दूसरे का मन भी हमारे वश में रहेगा?
हां, अन्य कितनों का मन आपके वश रहता है, कितने अंश वश में रहता है, वह सब आपको देख लेना है।
मन वश रहने की निशानी।
सामने वाले का मन वश में रहे उस बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक उदाहरण देकर समझाइए ना, तो सभी एग्जैक्टली समझ सकेंगे।
आप ऐसी जगह पर गए हो कि वहां 10 व्यक्ति पीएचडी हो, 10 व्यक्ति ग्रेजुएट हो, 10 व्यक्ति मैट्रिक पास हो, 10 व्यक्ति गुजराती ही पढ़े हो, 10 व्यक्ति अनपढ़ हो, 10 छोटे बच्चे 1.5-2 साल के और 10 बुजुर्ग 60-65 साल के, वे सभी इकट्ठे होकर जाएं तो वहां पर धर्म है। अर्थात जहां पर छोटे बच्चे भी बैठे रहें, स्त्रियां भी बैठी रहें, बुजुर्ग औरतें बैठी रहें और विवाहित लोग बैठे रहें, वहां धर्म है। क्योंकि जहां पर सामने वाले का मन वश कर सकने वाला हो वहां पर ही वे बैठ सकते हैं, वरना नहीं बैठ सकते। जिनका खुद का मन अपने वश हो गया हो वे ही सामने वाले का मन वश कर सकते हैं। जो स्वतंत्र रूप से चलते हैं, जिनका मन संपूर्ण रूप से वश में है, वहां काम होता है। अगर मन वश हो जाए तो आप सब कुछ कर सकते हो, लोग आपके कहे अनुसार चलेंगे। वरना आप सिखाने जाओगे ना तो कोई एक अक्षर भी नहीं सीखेगा, बल्कि उल्टा चलेगा। इस कलयुग की हवा ही ऐसी है कि जिससे उल्टा चलेगा। यदि कोई उल्टा चलता है, वह उल्टा सीधा बोलता है, तो भी हम उसका साथ नहीं छोड़ते।
सभी का मन वश रहता है ज्ञानी को।
दादा, इतने सारे व्यक्तियों को दादा के साथ अभेदता रहती है, वो किस प्रकार से रहती होगी?
वही आश्चर्य है ना। और लगभग 25,000 लोग अभेदता रखते हैं। अपने महात्माओं का मन हमारे वश रहता है, जिन्हें 24 घंटे दादा के अलावा दूसरा कुछ नहीं, जितना मैं कहूं उतना ही करते हैं। स्त्रियां और पुरुष सभी के, उसमें स्त्रियों का ज्यादा रहता है। स्त्रियां तो साहजिक है, साहजिक अर्थात जो सहज हो चुके हैं उनके ही वश में रहेगी, वरना वश में नहीं रहती ना।
स्त्रियों को कोई दखल ही नहीं रहता ना, समर्पण से स्त्रियों को जल्दी प्राप्ति हो जाती है ना।
लेकिन स्त्रियों का ही मन वश करना आसान नहीं है, पुरुषों का तो आसान है, स्त्रियों का तो बहुत कठिन है। क्योंकि जहां पर मन को वश कर सकें ऐसे हो वहां पर ही वे बैठ सकती हैं, वरना नहीं बैठ सकती।
आपको यह सब पता चल जाता है?
सब कुछ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का मन संपूर्ण रूप से वश में रहता है। संपूर्ण रूप से मन वश रहना अर्थात क्या कि हम जो कुछ भी कहें उनका मन हमारे कहे अनुसार एडजस्ट हो ही जाता है।
साहजिक वाणी माली की बगैर की।
साहजिक वाणी अर्थार्थ क्या?
जिसमें किंचित मात्र अहंकार नहीं, वह मैं इस वाणी का एक सेकंड भी मालिक नहीं बनता। अर्थात हमारी यह वाणी साहजिक वाणी है।
हमारी वाणी में तो साहजिकता नहीं है। यदि उसे छूट दे देते हैं तो झगड़ा करती है, और ब्रेक लगाते हैं तो अंदर तूफान करती है।
आपको कुछ नहीं करना है, छूट भी नहीं देना है और ब्रेक भी नहीं लगाना है। वह तो जब खराब बोला जाए तब हमें चंदू भाई से ऐसा कहना है कि चंदू भाई यह शोभा नहीं देता, आपने अतिक्रमण क्यों किया, प्रतिक्रमण करो। हमें तो अलग ही रहना है। कर्ता चंदू भाई है और आप ज्ञाता दृष्टा हो, दोनों का व्यवहार ही अलग है।
ज्ञाता दृष्टा रहने से चंदू भाई का काम ठीक से एग्जिट होता है?
बहुत अच्छा, एग्जैक्टली हो जाता है।
कुछ भी प्रयत्न किए बगैर एग्जैक्टली हो जाता है?
प्रयत्न करने से ही बिगड़ता है। चंदू भाई सारे प्रयत्न करेंगे। इसे मैं टेप रिकॉर्डर क्यों कहता हूं? क्योंकि यह साहजिक चीज है, इसमें मैं हाथ नहीं डालता, इसलिए फिर यह भूल बगैर की निकलती है। ऐसी कितनी ही टेपें भरी हुई हैं, और यदि आपको एक टेप भरनी हो तो उल्टा सीधा कर दोगे, क्योंकि साहजिकपना नहीं है। साहजिकपना आना चाहिए ना। साहजिकपना लाने के लिए यदि खुद ज्ञाता दृष्टा रहेगा तो साहजिकपना आएगा। जो करता है उसे करता रहने दो, और जो ज्ञाता है उसे ज्ञाता रहने दो। जैसा है वैसा होने दो तो सब ठीक हो जाएगा। इस ज्ञान का सारांश ही यह है, दोनों अपनी अपनी फर्ज बजाते हैं। आत्मा आत्मा की फर्ज बजाता है और चंदू भाई की फर्ज बजाते हैं। ज्ञाता ज्ञेय का संबंध रहना चाहिए। देह किस तरफ जा रही है, देह के कैसे कैसे नखरे हैं, वे दिखाई देने चाहिए। वाणी कठोर निकलती है या सरल निकलती है, वह भी आपको दिखाई देना चाहिए। लेकिन वह भी रिकॉर्ड है, वह दिखाई देनी चाहिए। कठोर या मधुर वाणी बोलना, वे सभी वाणी के धर्म हैं। और इन पांच इंद्रियों के धर्म, इन सभी धर्मों को जानते रहना है। इसी काम के लिए यह मनुष्य जन्म है। वे सभी धर्म क्या कर रहे हैं उन्हें जानते रहना है, अन्य बातों में नहीं पड़ना है। तभी मन की सहजता, वाणी की सहजता, देह की सहजता आती है ना, वह उसका फल है। देहाध्यास छूटते छूटते सहजता आती है। जब सहजता आती है तब पूर्णाहुति कहलाती है, क्योंकि आत्मा तो सहज ही है और इस देह की सहजता आ गई।
संसार वह अहंकार की दखल।
देह सहज अर्थात स्वाभाविक, इसमें अपना दखल नहीं रहता। जिसमें अहंकार का दखल नहीं रहता वह देह सहज कहलाती है। यह हमारी देह सहज कहलाती है अर्थात आत्मा सहज ही है। अहंकार का दखल समझ गए आप? अहंकार चला गया अर्थात सब चला गया। यह सारा संसार इगोइज्म की वजह से है, सारा इगोइज्म का ही आधार है। दूसरा कुछ भी बाधक नहीं है, यह इगोइज्म बाधक है। मैं मैं।
जितना सहज उतनी समाधि।
वह तो आपने सहज देह का प्रकार बताया, लेकिन वह सहज कब होती है?
सहज तो आपको यह जो ज्ञान दिया है ना, यदि वह ज्ञान में परिणाम पाकर ये सभी कर्म कम हो जाएंगे तो खुद सहज होता जाएगा। अभी सहज हो रहा है, लेकिन अंश रूप से हो रहा है। वह अंश अंश सहज होते होते संपूर्ण रूप से सहज हो जाएगा। अभी सहज की तरफ ही जा रहा है, देहाध्यास छूटने से सहज की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए अभी सहज ही हो रहा है। जितने अंश सहज हो जाएगा उतने अंश समाधि रहेगी। अगर देह को कोई कुछ भी करे तो भी हमें राग द्वेष नहीं होते। यह हमारी देह सहज कहलाती है। आपको अनुभव करके देख लेना है। हमें राग द्वेष नहीं होते, इसलिए हमारी देह सहज है। अतः सहज किसे कहेंगे, वह समझ लेना है। सहज अर्थात स्वाभाविक, कुदरती रूप से स्वाभाविक, उसमें विभाविक दशा नहीं रहती, खुद मैं हूं ऐसा भान नहीं रहता।
रक्षण से रुका है सहजपना।
देहाध्यास कब जाता है?
अगर कोई जेब काट ले और आपको कोई असर ना हो तो देहाध्यास चला गया। देह को कोई कुछ भी करे और यदि खुद उसे स्वीकार ले तो वह देहाध्यास है। मुझे क्यों किया तो वह देहाध्यास है। ज्ञानियों की भाषा में देह सहज हो गई अर्थात देहाध्यास चला गया।
ज्ञान के बाद वह साहजिकता कैसी रहती है, उसे समझाइए ना।
जितना उदय में आया हो उतना ही करे, पोतापणु नहीं रखे। अभी तो लोगों को पोतापणु कैसा है। प्रकृति का रक्षण करने की बात तो है ही, बल्कि उल्टा अटैक भी करते हैं, सामने वाले पर प्रहार भी करते हैं। इसलिए यह पोतापणु निकालना है ना, प्रकृति का रक्षण करना, वह पोतापणु है। अपने महात्मा करते होंगे क्या, इसीलिए सहज नहीं हो पाते भाई। यह तो जरा सा अपमान करे उससे पहले ही रक्षण कर लेते हैं, जरा सा कुछ और करे वहां रक्षण कर लेते हैं। वह सब सहजपना होने ही नहीं देता ना।
अपमान करने वाला उपकारी।
मूल वस्तु प्राप्त करने के बाद अब अहंकार का रस खींच लेना है। यदि रास्ते में कोई कहे अरे आप बेअक्ल हो सीधे चलो, तो उस समय अहंकार खड़ा होता है, चिढ़ होती है, उसमें रूठने का रहा ही कहां। अब हमें चिढ़ जैसा कुछ रहता ही नहीं। अहंकार का जो रस है उसे खींच लेना है। अपमान किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कहते हैं कि वह तो बहुत हेल्पिंग है। मान अपमान वह तो अहंकार का कड़वा मीठा रस है। अपमान करने वाला तो आपका कड़वा रस खींचने के लिए आया कहलाएगा। आप बेअक्ल हो ऐसा कहा अर्थात वह रस सामने वाले ने खींच लिया। जितना रस खींच गया उतना अहंकार चला गया, और वह भी बगैर मेहनत के दूसरे ने खींच लिया। अहंकार तो रस वाला है, जब कोई अनजाने में निकालता है तब जलन होती है। इसलिए जानबूझकर सहज ही अहंकार को खत्म हो जाने देना है। यदि सामने वाला सहज ही रस खींच लेता हो तो उससे अच्छा और क्या है। सामने वाले ने कितनी ज्यादा हेल्प की कहलाएगी।
मान में नुकसान, अपमान में फायदा।
दादा, यह जो पूजे जाने की भीख है वह कैसे जाएगी, उसके सामने किस तरह से एडजस्टमेंट लेना है, उसमें कैसा उपयोग रखना है।
वह तो जब हम अपमान की आदत डाल देंगे तब
प्राप्त करनी है अयाचक दशा, जबकि अंदर तो हर एक बात की भीख है।
अयाचक पना तो जाने दो ना, लेकिन यदि भीख चली जाए तो भी बहुत हो गया। यह भीख तो अब यदि हम किसी के कंपाउंड में से होकर जाते हो और वह व्यक्ति गाली देता हो तो रोज वहां से होकर जाना चाहिए, रोज गाली खानी चाहिए, लेकिन उपयोग पूर्वक सहन करना चाहिए, वरना उसे आदत पड़ जाएगी, बेशर्म हो जाएगा।
उपयोग पूर्वक सहन करना अर्थात क्या।
अगर कोई आपकी बहन को उठाकर ले गया हो तो उस उठाने वाले के ऊपर आपको प्रेम आएगा, क्या होगा,
द्वेष होगा।
तब वह नींद में रहता है या उपयोग पूर्वक रहता है। 100% उपयोग पूर्वक रहता है, एकदम उपयोग पूर्वक रहता है। फिर जब चोरी करने जाता है तब वहां उपयोग पूर्वक जागृति रखता होगा या सोता होगा।
उपयोग पूर्वक रहता है।
अतः उपयोग समझ जाओ। यहां मोक्ष मार्ग में तो उपयोग वाले ही काम आते हैं। जब कोई अपमान करे तब मुंह बिगड़ गया है, यदि ऐसा पता चले तो फायदा नुकसान नहीं होता, नो लॉस नो प्रॉफिट। और यदि बाहर मुंह बिगड़ा तो नुकसान होता है। नुकसान किसे होता है, पुद्गल को, आत्मा को नहीं। और यदि बाहर मुंह नहीं बिगड़ा, क्लियर रहा, तो उतना आत्मा का आनंद रहा। आत्मा का फायदा होता है ना।
यदि मुंह बिगाड़ा तो पुद्गल को क्या नुकसान होगा?
पुद्गल को तो नुकसान हो ही गया ना।
लेकिन यदि वह जागृति पूर्वक रहा तो उसका मुंह नहीं बिगड़ा।
कितनों को तो अपमान हुआ या उसे गुस्सा आ गया तो खुद को पता चल जाता है। बाद में मैं पूछता हूं कि आपको पता चला क्या, तब कहता है हां पता चला। लेकिन वह छोड़ेगा किस तरह से? उसके बावजूद भी उसे छोड़ देना है, अंत में सहज ही करना है। वैसा सहज तो जब बहुत समय तक सुनता रहेगा तब सहज होता जाएगा।
जागृत की दृढ़ता के लिए
हमारी कमी कहां रह जाती है?
उतनी शक्ति उतनी जागृति उत्पन्न नहीं हुई है। जागृति कमजोर है, हर क्षण की जागृति चाहिए। हमें एक क्षण भी कोई दोषित नहीं दिखाई देता। दोषित दिखने की वजह से ही तो ये सभी झंझटें हैं, क्योंकि यह विज्ञान ही ऐसा है। कोई दोषित है ही नहीं, और अगर दोषित दिखाई देता है तो उपवास करना चाहिए। चंदू भाई से कहना कि उपवास करो।
दूसरे दिन कोई दोषित नहीं दिखाई देगा।
दोषित है ही नहीं।
उपवास करने के बाद फिर दूसरे दिन कोई दोषित नहीं दिखाई देगा?
नहीं, आपको उपवास करने को कहा, उसका कारण क्या है कि उतनी मजबूती रहनी चाहिए, स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए, निर्दय नहीं बनना चाहिए।
किसी के अहम को दुभाना नहीं।
उदाहरण के तौर पर इनकम टैक्स में मेरी एक फाइल बाकी है। अब उस इनकम टैक्स ऑफिसर को यह ज्ञान नहीं मिला है, अर्थात उसे अहंकार है। अब वह अहंकार से मेरा कुछ बिगाड़ सकता है क्या?
नहीं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप उसे अहंकार से जवाब नहीं दो तो
मैं तो उसके पास जाता भी नहीं, मुझे उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन यह फाइल रूटीन में आती है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यदि वह ऑफिसर अहंकारी हो तो मुझे कुछ नहीं कर सकेगा।
उसे संडास जाने की शक्ति नहीं है तो आपका क्या करेगा? आपका कब करेगा कि जब आप ऐसा कहो कि ऐसे ऑफिसर को मैं देख लूंगा?
ऐसा तो कोई नहीं करेगा।
हां, आप सहज हो, नम्र हो, तो आपको कुछ नहीं होगा। यदि आप उसे दुख नहीं देते तो वहां व्यवस्थित में कोई बदलाव नहीं होगा। उसकी शक्ति ही नहीं है बेचारे की।
अब एक तरफ तो आप ऐसा कहते हो कि उसे संडास जाने की शक्ति नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हो कि उसे अहंकार है।
वह तो यदि उसे दुख देंगे तो सामने वाले को दुख देने की शक्ति उसमें है, इसलिए हमारा कोई भी शब्द ऐसा नहीं निकलना चाहिए।
तब आएगा हल।
इस संसार में दखल अंदाजी किए बगैर क्यों नहीं रह पाते होंगे?
वह तो उसकी प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी कि इस तरह से दखल अंदाजी कभी भी नहीं हो। जब इस चाबी का उपयोग बार बार करेंगे तब फिर जो दूसरा थोड़ा बहुत माल बचा है उसके निकल जाने के बाद बंद हो जाएगा।
क्योंकि अगर हमें सहज होना है और देखते रहना है तो दखल अंदाजी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं।
वह तो पहले का जो माल भरा हुआ है वह निकले बगैर नहीं रहेगा। भरा हुआ माल तो निकले बगैर रहेगा ही नहीं ना। भरा हुआ माल अच्छा ना लगे तो भी निकलता ही रहता है। उसे हम देखें तो सहज ही है। जब प्रकृति सहज होगी, दोनों सहज होंगे, तब हल आ जाएगा। लेकिन अगर अभी एक सहज हो गया तो भी बहुत हो गया।